अध्याय एक, व्यक्तिवाद। आत्मरक्षा ही एकमात्र ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए मानव जाति को व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से अपने में से किसी एक की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। दूसरों की संभावित हानि को रोकना ही एकमात्र ऐसा उद्देश्य है जिसके लिए सभ्य समाज के किसी सदस्य पर उसकी इच्छा के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। उसका अपना हित शारीरिक अथवा नैतिक पर्याप्त प्रमाण नहीं है। अपने ऊपर अपने शरीर अथवा मस्तिष्क के ऊपर उसका पूर्ण प्रभुत्व है। जॉन स्टुअर्ट मिल। व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद और राज्य का पारस्परिक संबंध और राज्य का कार्यक्षेत्र राजनीति विज्ञान के सबसे अधिक विवादग्रस्त विषय रहे हैं और इस संबंध में जिन विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिपादन किया गया है उनमें व्यक्तिवाद को एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान मिला है। व्यक्तिवाद 17वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोप की राजनीति विचारधारा का केंद्र बिंदु रहा। व्यक्ति के महत्व पर आधारित इस विचारधारा के व्यक्ति समाज और राज्य के लिए नहीं वरन समाज और राज्य के लिए है का विचार प्रतिपादित किया और आदर्शवादियों के सर्वाधिकारवादी राज्य में उपेक्षित व्यक्ति की गौरव गरिमा को समाज में फिर से प्रतिष्ठित किया। मिल ने न केवल सभी समान व्यक्तियों को वरन सनकी व्यक्तियों को भी विचार की स्वतंत्रता देने में पक्ष की है, क्योंकि उनका कहना है कि जिन्हें एक जमाने में सनकी समझा गया था वे आज महान व्यक्ति समझे जाते हैं। सुकरात और ईसा मसीह अपने जमाने में सनकी ही तो समझे जाते थे, लेकिन आज ये हमारी दृष्टि में पूज्य हैं। इस संबंध में उसका कथन है कि 10 सनकी व्यक्तियों में से 9 निरर्थक बुद्ध हो सकते हैं, किंतु 10वां व्यक्ति मानव जाति के लिए इतना लाभदायक हो सकता है कि जितने अनेक साधारण व्यक्ति मिलकर भी नहीं हो सकते। मिल व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा न केवल राज्य के हस्तक्षेप के वरन असहयून समाज बहुमत और परंपराओं के दबाव से भी करने के लिए प्रयत्नशील है। सेवाइन का विचार है कि मिल को डर था कि स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा सरकार की ओर से नहीं आता वरन ऐसे बहुमत की ओर से आता है जो नवीन विचारों के प्रति असहयून होता है, जो विरोधी अल्पसंख्यकों को संदेह की दृष्टि से देखता है और जो अपनी संस्था के जोर से उन्हें दबा देना चाहता है। मिल का विचार था कि बहुमत सदैव ही ठीक नहीं हुआ करता, अतः बहुमत के द्वारा अल्पमत का दमन नहीं किया जाना चाहिए। मिल ने इस बात पर बल देता है कि शासन को किसी प्रकार के विचार के दमन का अधिकार प्राप्त हो तो चाहे उसे इसमें जनता का समर्थन क्यों न प्राप्त हो, इस संबंध में सर्वश्रेष्ठ सरकार को भी सबसे बुरी सरकार से अधिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। मिल के ही शब्दों में यह हानिकारक है जबकि शासन इसका प्रयोग जनमत के विरुद्ध करता है, और इस समय इससे भी अधिक हानिकारक है जबकि इसका प्रयोग जनमत के अनुकूल किया जाता है। यदि एक व्यक्ति को छोड़कर संपूर्ण मानवता का एक ही विचार हो तो भी मानवता को इस एक व्यक्ति को मौन रखने का इससे अधिक अधिकार नहीं हो सकता जितना कि उसका एक व्यक्ति को। यदि उसके पास शक्ति हो तो संपूर्ण मानवता को मौन रखने का अधिकार हो सकता है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक बनकर मिल ने वास्तव में इंग्लैंड की संसदात्मक पद्धति और इंग्लैंड के विचार विमर्श में विश्वास को मान्यता दी। कार्य स्वतंत्रता मिल के द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पूरक रूप में कार्य की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया। मिल के अनुसार कार्य और स्वतंत्रता में व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रकट होता है और यह उसकी आत्मोन्नति का मार्ग है। उसके अनुसार कार्य का स्वतंत्रता मानव जीवन के सुख का एक मुख्य तत्व है और वही व्यक्तित्व और सामाजिक प्रगति का भी आवश्यक तत्व है। लेकिन विचार स्वतंत्रता और जीवन के कार्य पर स्वतंत्रता में एक अंतर है। हमारे कार्यों का प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों के जीवन पर पड़ता है, इसलिए समाज या अन्य व्यक्ति अपनी सुरक्षा के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आपत्ति कर सकते हैं। इसलिए एक व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता तो निरपेक्ष रूप से प्राप्त हो सकती है, लेकिन कार्य की स्वतंत्रता उस सीमा तक ही प्राप्त हो सकती है जहाँ तक यह स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनती। मिल मानव कार्यों को दो भागों में विभाजित करता है, स्वविषयक और परविषयक। पहले क्षेत्र के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जिनका संबंध व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से होता है। इस क्षेत्र में सोना, पहनना, खाना और आचार विचार आदि कार्य आते हैं। मिल इन कार्यों के संबंध में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में है। उसका तो यहाँ तक कहना है कि यदि व्यक्ति अपने घर में जुआ खेलता है अथवा मद्यपान करता है और यदि उसके इस कार्य का प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता तो व्यक्ति को ऐसा करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति रहन सहन के तरीकों या समाज की प्रचलित व्यवस्थाओं का चिंता किए बिना अपने निजी तरीके से रहता है तो इसमें राज्य या समाज के अन्य व्यक्तियों द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। परविषयक क्षेत्र में वे कार्य आते हैं जिनका प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है। परविषयक कार्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, विशेषकर जबकि उसके कार्यों में अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचती है। इस संबंध में मिल लिखता है, वह एकमात्र उद्देश्य जिसके लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से मानव जाति को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने किसी सदस्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सके, आत्मरक्षा ही है। वह प्रयोजन जिसके लिए सभ्य समाज के किसी सदस्य के विरुद्ध न्याय रूप से उसकी इच्छा के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, यही है कि और को हानि न पहुंचा सके। उसके भौतिक ही या नैतिक हित के नाम पर उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क के ऊपर व्यक्ति संप्रभु है। मिल का विचार है कि विविधता से ही मानवीय प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है, इसलिए वह सबके लिए एक सा जीवन रखना सामाजिक विकास के विरुद्ध मानता है। मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता को सामाजिक रीति रिवाजों से भी मुक्त करना चाहता है, क्योंकि इन रीति रिवाजों से रूढ़िवादी दृष्टिकोण का उदय होता है जो मानवीय व्यक्तित्व के विकास में बाधक होता है। इस प्रकार मिल व्यक्ति के लिए कार्यों की स्वतंत्रता का प्रतिपादन करता है, लेकिन उसका विचार है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में व्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षा के लिए राज्य व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। पहला, यदि व्यक्ति स्वतंत्रता का अनुचित प्रयोग करता हुआ अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधक बनता हो। दूसरा, जब मनुष्य स्वतंत्रता के अनुचित प्रयोग द्वारा अपने कर्तव्य पालन को भूल जाए। तीसरा, संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए भी व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का कुछ अंश त्यागने के लिए बाध्य किया जा सकता है। निष्कर्ष रूप में हम मिलके स्वतंत्रता संबंधी विचारों को डेविडसन के अनुसार निम्नलिखित तीन शीर्षकों में से इस प्रकार रख सकते हैं। पहला, व्यक्ति की भावनाओं और इच्छा को उचित स्थान दिया जाना चाहिए। बौद्धिकता द्वारा इनका पुनः अपहरण नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, सामाजिक और सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि से व्यक्ति के दृष्टिकोण को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। इसमें मानव कल्याण में वृद्धि होगी और लोग आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तीसरा, सामाजिक परंपराओं का विरोध किया जाना चाहिए जो मनुष्य के विकास में बाधक हों और जिनसे विचारों की अभिव्यक्ति तथा आचरण की स्वतंत्रता में बाधा पड़ती हो। स्वतंत्रता के सिद्धांतों की